15 जून 2019, हम इस वक्त आइल ऑफ वाइट में हैं, इंग्लैंड में, और मम्मी जी हमारे साथ हैं।
हेलो, नमस्कार।
नमस्कार मम्मी। हमने पिछली बार जो है बात छोड़ी थी आपके 10वीं के रिजल्ट्स के ऊपर, थोड़ी बात की थी हमने। अब हम यहाँ आए आइल ऑफ वाइट में। आप, हो सकता है कि जो ये सुन रहे हो उनको पीछे समुद्र की भी आवाज़ आ रही हो। क्योंकि लहरें समुद्र की आ रही हैं। हम यहाँ से अब आपके कॉलेज के दिनों को याद करेंगे। तो पहले तो जो 10वीं का रिजल्ट था, मैं बस ये पूछना भूल गया था कि 10वीं का रिजल्ट जो था वो कैसे मिला था आपको? जैसे आजकल तो हम इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं सुबह सुबह, वो पता चल जाता है इतने बजे आएगा, इतनी तारीख को आएगा, सारे लोग इकट्ठे होकर चेक कर लेते हैं। तो आपका रिजल्ट कैसे आता था?
हमारा एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से स्कूल में ही सर्टिफिकेट आता था, तो एक डे रखते थे हमारे प्रिंसिपल, वो उस दिन जो है सब बच्चों को अपना अपना सर्टिफिकेट बांट देते थे।
अच्छा, और कितनी एक्साइटमेंट रहती थी उस दिन के लिए?
उस दिन के लिए तो पूछ मत कितनी रहती थी, बहुत बुरा हाल कर, इतना तो मन में था पास हो जाना कि नंबर किससे कम आएंगे किससे ज़्यादा आएंगे, ये बहुत ज़्यादा मन में रहता था। जब हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता था फिर तो छलांगे मारते थे।
तो आज आप इतने साल हो गए हैं वो रिजल्ट आए हुए, आज आपको क्या लगता है कि 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम आने से ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ता है?
वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस टाइम इतना नहीं पड़ता था जितना अब पड़ रहा है। अब तो बच्चों को अगर 5 नंबर कम आ जाए तो वो रोने बैठ जाते हैं, हम रोने नहीं बैठते थे। ये है कि ठीक है, उस टाइम थी वैल्यू, नंबरों की भी वैल्यू थी, लेकिन इतना नहीं था कि पास हो गए, सेकंड आ गए, फर्स्ट आ गए, मैं छलांगे मारते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
ठीक है, तो उसके बाद जब आप 10वीं ने पास कर लिए तो उसके बाद आपने ITI की ट्रेनिंग ली?
हाँ, उसके बाद मैं हमीरपुर में ITI की 2 साल की ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर मैं शिमला में ट्रेनिंग ली BST की 1.5 साल की, और उसके बाद जो है मेरी जॉब लग गई।
ITI क्या होता है और क्यों ली वो ट्रेनिंग और कैसे ली?
ITI में मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नौकरी ना भी लगी तो अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें सिलाई कढ़ाई, ये साड़ियों में कढ़ाई करनी, सूट सिलने, सारे जो है बुटीक का काम जो था वो हमारे 2 साल की ITI में था। फिर CTI होती है चंडीगढ़, लेकिन मैं शिमला चली गई थी फिर ट्रेनिंग में, तो पेरेंट्स ने ये सोचा कि ये ट्रेनिंग करवाने से नौकरी लगी ठीक है, नहीं लगी तो अपना घर में चला सकते हैं बिजनेस, और बिजनेस में बहुत पैसा कमा रहे लोग आजकल।
अच्छा, तो आपने ITI करने आप कहाँ गए थे?
ITI करने में डेली घर से हमीरपुर जाती थी, डेली आती थी, डेली जाती थी।
अच्छा, तो उस टाइम आपके कोई नए दोस्त बने, और क्या उस समय के कोई यादगार कुछ ऐसे पल हों जो अभी भी आपको याद आते हों?
हाँ, उस टाइम नए दोस्त भी बने, लेकिन जो हमारी मैडम थी वो मेरे को, मेरे पिताजी ने उनके घर रहने के लिए वो कर दिया था कि हफ्ते में एक बार घर आया करेगी और इनके पास रहा करेगी, तो मेरी मैडमें जो हैं वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत मेरे से प्यार करती थी। 2 मैडमें थी, उन्होंने दोनों ने शादी नहीं करी थी, उनकी जो मदर थी बस 3 थी वो, तो मैं उनके घर में थोड़ा बहुत खाना बनाने में हाथ बंटाती थी, बाकी मैं अपना काम करती थी, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। हाँ, मेरे सिलाई कटाई में बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे से बहुत प्यार से बात करती थी वो। आज भी मैंने उन मैडमों को जो है, जब बुढ़ापे में आ गई तो मैंने एक छोटी सी लड़की उनको एडॉप्ट करवाई थी, लेकिन वो लड़की तो बड़ी करके उन्होंने शादी कर दी, और अब दोनों मैडमें और उनके मदर इस टाइम जो है वो स्वर्ग सुधार चुकी हैं, उनकी बहुत याद आती है, बहुत, जब आपने बात लगाई तो मेरे को तीनों मैडमे, मदर और दोनों मैडमे मेरे सामने तस्वीर की तरह खड़ी हैं। जो मैंने उनको लड़की अडॉप्ट करवाई थी वो भी मेरे को ऐसे लग रहा सामने दिख रही है। मेरे को आपने बहुत पुरानी याद करवा दी, तो इसलिए मेरे को जो है वो बहुत सामने नज़र आ रही हैं।
अच्छा, और आपने मैडमों की बात की, तो ऐसा कैसा कि इतने साल तक आपका और उनका ये जो कन्वर्सेशन है या जो रिश्ता है वो चलता रहा, ये कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्मली तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, हम उनके लिए फेयरवेल थ्रो करते हैं, वो हमारे लिए फेयरवेल थ्रो करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, कभी फेसबुक पे मिल लिए। लेकिन आपने तो इतना बड़ा रिश्ता निभाया, उनको बच्चे अडॉप्ट करवा दिए, तो सबसे पहले बच्चे अडॉप्ट करवाने की ज़रूरत क्या पड़ी?
सबसे पहले ऐसा था, पहले वो जब यंग थी तो वो इस बात की परवाह नहीं मारती थी, लेकिन जब मेरी जॉब लगी वेलफेयर डिपार्टमेंट हमीरपुर में, तो जहाँ मेरा ऑफिस था उसके पास में ही उन्होंने घर बनाया था, वहीं उनके आंगन से मेरा रास्ता था ऑफिस जाने का। तो जैसे ही मेरे को एक दो बार वो सर्दियों के दिनों में धूप में बैठी नजर आई, मैंने कहा हो ये तो मैडम है मेरी, तो मैं उनसे मिलती थी, आती थी जाती थी। जब लंच टाइम होना ऑफिस में तो मैं उनके पास खाना खाना, उनसे बातें शेयर करनी, उनका दुख सुख शेयर करना। तो वो कहती कि देख प्रेम अब बुढ़ापा आता जा रहा है और ये बच्चा बहुत ज़रूरी है, हमारी माँ तो चली गई, हम दोनों रह गई हैं, तो अब कैसे क्या होगा, तू इस वेलफेयर डिपार्टमेंट में है तो इसमें कोई सहायता हो सकती है? मैं कहा हाँ बहुत हो सकती है सहायता। तो मैंने कहा ये कि मैं आपको बच्चा अडॉप्ट करवा देती हूँ। कहते कि बच्चा भी ऐसा अडॉप्ट कराना कि हम पाल तो नहीं सकती, बुढ़ापा आ गया, लेकिन पली पलाई कोई 10-12 साल की लड़की हो। ठीक, मैंने कहा ठीक है। तो एक हमारे गांव की लड़की थी, उसकी आगे शादी करके उसकी 4 लड़कियां थी, तो मैंने उनसे बात करी, उनकी जो है 12 साल की लड़की मैंने मैडम को, वो बहुत गरीब थे, वो मैडमों को मैंने अडॉप्ट करवा दी और फिर उन्होंने वहीं पढ़ने डाल दी। उसके आना जाना, घर की देख रेख, परवरिश करना शुरू हो गई, वो बहुत खुश नज़र आने लगी मैडमें, मेरे को भी बहुत तसल्ली मिली मन को।
तो वो दो मैडमें क्या बहनें थी, दोस्त थी, वो साथ में क्यों रहती थी?
वो बहनें नहीं थी, वो दोस्त थी। उन्होंने दोनों ने शादी नहीं करी, उन्होंने शादी एक ने तो करी नहीं, एक ने करी थी लेकिन उसके दुर्भाग्यवश उसके जब शादी का पहला दिन था, पंडित वो कर रहे थे लगन वेद होती है हमारे तरफ, तो उसमें उसके पति जो वो हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया था, तो उसने कसम खा ली कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो जो उसकी फ्रेंड थी वो तो करने को मना ही करती थी कि मैंने तो करनी नहीं है, तो फिर वो दोनों इकट्ठी रहना शुरू कर दिया उन्होंने।
ठीक है, उसके बाद आपने आईटीआई के बाद आप शिमला चले गए थे?
हाँ, उसके बाद आईटीआई के बाद जो है मैं शिमला चली गई थी। शिमला मैंने 1.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत मैं 1.5 साल बाद जो है वो वेलफेयर डिपार्टमेंट हमीरपुर में लग गई थी।
तो शिमला जाने का डिसीजन कैसे हुआ?
शिमला जाने का डिसीजन ऐसे हुआ कि आईटीआई करके जब मैं हटी तो शायद वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोई ट्रेनिंग चल रही थी शिमला में, और वहाँ पे हमीरपुर से सारे डिस्ट्रिक्ट से ही लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तो वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू जा रही थी। तो मेरा भाग्य अच्छा होगा कि मेरे पिताजी की तो डेथ हो गई थी, स्वर्ग से धार चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी को कोई उस ऑफिस में बंदा जानता था, जिसने क्या किया मेरे को घर में आके लेके गया वो, कि वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, अपने कपड़े टैची तैयार कर लो। तो वो घर में आके लेके गया मेरे को, और फिर मेरे को उन्होंने सर ने मेरे को जो है शिमला छोड़ा और ट्रेनिंग में छोड़ा। मैं उनके लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी उनके द्वारा जो हेल्प की हुई आज मैं इंग्लैंड आई लव वाइट समुंदर के किनारे खड़ी हूँ, मेरे को बहुत याद आ रही है जेपी शर्मा की।
ओके, तो फिर आप शिमला पहुँच गए। अच्छा, तो शिमला आपके लिए बहुत बड़ा नया शहर होगा, वैसे तो हमीरपुर ही बहुत बड़ा शहर होगा जब आप हमीरपुर पहुंचे होंगे, तो उसके बाद तो शिमला पहुंच गए घर से इतनी दूर। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को तो एकदम से आज़ादी मिलती है कि ना कोई माँ बाप भाई बहन किसी की कोई बंदिश नहीं, तो वो नई नई आज़ादी जो थी वो कैसी लगी?
नहीं, वहाँ ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा वो आज़ादी। वहाँ हमारे हॉस्टल में वार्डन होती थी, एक प्रिंसिपल मैडम को वहाँ रहना होता था, हमारे पे बंदिश थी, टाइम टाइम से हमें घुमाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टाइम से घुमाते थे। हमारे ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही ओल्ड कल्चर का ऑफिस था एक, तो हम वो बिल्कुल साथ था, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, फूल बहुत अच्छे लगते थे वहाँ पर, तो हमने बहुत मस्ती मारी है, वो गाड़ियों के ऊपर फूल पकड़ के फ़ोटो खिंचवाए। और वो ऐसे टाइम टू टाइम मैडम जो है वार्डन जो है हमें लेके जाती थी, पूरी शिमला में घुमाती थी, यूनिवर्सिटी घुमाया, तो ऐसे ऐसे जो है मशोबरा में घुमाया, हमें सारे में घुमाया।
तो ये जो बड़ी नवयुवक लड़कियाँ थी यंग यंग, तो कोई लड़के नहीं पढ़ते थे पीछे?
ऐसा है कि हमारे ऑफिस में वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में खाली लड़कियाँ ही थी जितनी भी थी, और पूरा स्टाफ लेडीज था, एक दो चौकीदार होते थे, खाना बनाने वाले जेंट्स एक दो होते थे, और लेकिन जैसे ही अगर माल रोड पे घूमने चली जाती थी हाँ तो देखते तो थे, लेकिन हमारे साथ बांटने मैडमें होती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाइल तो लड़के भी मारते थे लड़कियां भी स्टाइल मारती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर अपने वार्डन और मैडमों के साथ फिर हॉस्टल में पहुंच जाती थी शाम को।
तो किसी का ऐसे फिल्मों की तरह कोई प्रेम प्रसंग नहीं चला जिसमें वो खिड़की से कूद के बाहर गई हो अपने प्रेमी से मिलने?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चला, उस जमाने में इतना सुपर फास्ट जमाना नहीं था जो आज है, जो आज तो खिड़कियों से तो क्या कूदना, आज तो जितने मर्जी बंदिश लगी हो छलांगे मार के बाहर निकल जाती हैं, आज शीशे तोड़ के बाहर निकल जाती हैं, नहीं उस टाइम ऐसा नहीं था।
अच्छा, तो वो जमाना अच्छा है कि आज का जमाना अच्छा है?
देखो अगर बात की जाए एक लड़की वाली जो दुनिया समझती है, तो वो जमाना लड़की के लिए ठीक था, लेकिन अब भी ठीक है, लड़के लड़कियां सुपर फास्ट हैं, अपने पेरेंट्स को इतना बोझ बना के नहीं रहने देते, अपना मौज मस्ती करते हैं, कई मैरिज कर लेते हैं, कई कुछ, तो आज का अपने हिसाब से ठीक है, और हमारा जो था वो अपने हिसाब से ठीक था।
तो वहाँ पे आपने शिमला में कुछ मौज मस्तियाँ भी की होंगी, कुछ शरारतें की होंगी, तो मेरे को याद है आपने एक घी वाला एपिसोड सुनाया था, पता नहीं वो शिमला में हुआ था कि कहाँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके शिमला के दिनों की जो आपने याद रखी हो?
हाँ, जब मैं शिमला गई थी मेरा 42-43 वेट था, और शिमला उस टाइम दिमाग में परवाह नहीं थी कि मोटापा आ जाएगा क्या हो जाएगा, तो हमें ना सवेरे जो नाश्ता मिलता था वो परांठे मिलते थे, के दो दो परांठे मिलते थे चाय का कप, चाय तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाती, तो लड़कियां चाय की बहुत शौकीन सारी, मेरे को कोई ध्यान नहीं है कि कोई लड़की ऐसी हो जो चाय नहीं पीती, सब लड़कियाँ जो चाय पीती थी, तो मेरी जो चाय का कप है, जिस लड़की ने चाय का कप ले लेना उसके लिए एक ही परांठा रहता था, वो एक परांठा और मेरे को दे देती, मेरे तीन परांठे हो जाते थे। और वहाँ पे एक तो शिमला का मौसम, और ऊपर से डालडे घी के बड़े बड़े कनस्तर होते थे टीन भरे हुए, तो वो बर्फ की तरह जमे हुए होते थे, उसको चाकू से पहले ही चोरी से काट के वो हाथ में परांठे और एक हाथ में वो बर्फी की तरह वो पीस घी का वो खाए जाना। एक साल में मेरा 42-43 से 65 वेट हो गया था, तो मैं तो अब अगर मेरे को अब वो ट्रेनिंग करनी पड़ती, मैं कभी घी को या परांठे को हाथ ना लगाती, अब पता चल रहा है कि मोटापा क्या होता है, मोटा कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, फिर लोग भी ऐसे देखे बड़ी मोटी मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मैं पतली, मैं ये सोचती हूँ अब तो मैं 7 जन्म नहीं ऐसी पतली हो सकती 43-44, क्योंकि मोटापा तो बहुत ज़्यादा आ चुका है मेरे में।
अच्छा, और एक बार आपने पूरा पता नहीं एक पूरा कितना बोतल घी पी लिया था या कुछ ऐसा था, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ?
वो ऐसे है कि ऐसे ही बचपन में शर्त लगा ली घी के, मैं घी बहुत खाती थी। आप सुन ही रहे कि मैं बर्फी के पीस की तरह परांठे के साथ खाती थी। तो पीने में क्या हर जगह तो ऐसे ही कि घी बहुत खाती है, पता लगेगा पी के देख। तो 1 किलो घी जो है वो पिघला के थोड़ा उसको कोसा सा वो गिलास में भर भर के 4 गिलास घी के पी लिए। और फिर मैं वो देखते रहे सारे, अब मरी। मैं तो एक दो दिन सोई रही बिल्कुल ठीक रही है, फिर मैदान में आ गई।
अच्छा, और जैसे आपकी डाइट से लगता है और आपके जो जीवन जीने का तरीका है, मतलब कि आप फिजिकल एक्टिविटी में भी ज़्यादा विश्वास रखते हो, रोज़ सुबह वॉक के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ फिजिकल करते रहते हो, तो उससे लगता है कि जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि शायद आप पहलवान बन सकते थे, तो आपको लगता है कि अगर आपको गाइडेंस मिलती, आपके हिसाब से चीज़ें जाती, तो आप कहीं ओलंपिक मेडल लाते इंडिया के लिए?
हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मैं बहुत शरारती टाइप की थी। कबड्डी में गुड प्लेयर, स्टेट टूर्नामेंट खेले हुए, अगर मेरे को मान लो सपोर्ट मिलती, उधर से बाप नहीं रहा, उधर से भाइयों को अपनी जिम्मेवारी पड़ गई, माँ को घर की जिम्मेवारी पड़ गई सारी, तो मतलब अगर ये सपोर्ट मिलती ना मेरे को, तो शायद आज तो मैं दुनिया में नाम रोशन करती, बहुत आगे जाती। ये इंग्लैंड तो क्या, इंग्लैंड से भी आगे जाती अगर मेरे को सपोर्ट होती उस टाइम तो।
अच्छा, ठीक है, तो एक बार फिर से बताना कि आप शिमला में कोर्स कौन सा कर रहे थे?
शिमला में कोर्स करी थी मैं BST, बाल सेविका ट्रेनिंग, जिसमें बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है वो ट्रेनिंग करी थी। वो वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू ही होती है। अब आजकल वो बंद है, वो मैंने 83-84 में की थी, और उसके बाद भी शायद 1-2 साल चली है, उसके बाद वो बंद है। अब जो है वो बदल गया, अब है आंगनवाड़ी ट्रेनिंग, जो आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं वो आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी थी बाल सेविका ट्रेनिंग।
तो जब बाल सेविका ट्रेनिंग आप कर रहे थे शिमला में, तो अब मेरे को याद है एक फ़ोटो थी आपकी जिसमें बहुत सारी सहेलियां खड़ी हैं और आप भी उसमें अच्छे स्लिम ट्रिम लग रहे हो, एक ग्रुप फोटो है, तो उन वो आपकी कोई सहेलियां बनी, कोई फास्ट फ्रेंड बनी, आज भी किसी से टच में हो?
हाँ हाँ, आज भी मैं टच में हूँ। चंबा में मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है ज्योति वाली, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उनका अपना, मैं आज भी टच हूँ। और जब हमारी कभी मीटिंग होती है शिमला में, तो हम सारी 12 डिस्ट्रिक्ट की 8-9 लड़कियाँ थी हर डिस्ट्रिक्ट से, तो सब इकट्ठी होती हैं और फिर खूब मजाक करती है, खूब हु हल्ला करती है। एक मेरी फ्रेंड है कमला ठाकुर, कुल्लू से मनाली से, तो वो क्या नाम ट्रेनिंग में आई, मैंने कहा तू इतनी सुंदर, तेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, तेरे पीछे उसी टाइम लड़के पढ़ते थे, तूने मैरिज क्यों नहीं करी? मैरिज नहीं करनी, कहती करनी तो है, लेकिन बोला मेरे को ऐसा लड़का चाहिए जो सरकारी जॉब करता हो और जो गाड़ी ड्राइविंग अच्छी जानता हो, गाड़ी चलाना मेरे को गाड़ी का बहुत शौक है और वो ड्राइविंग अच्छा जानता हो। मैंने कहा अब उम्र क्या होगी तेरी? मैं कहा रिटायरमेंट को क्या टाइम रह गया? कहती रह गए 2-2.5 साल। मैंने कहा अब तेरे को फुल ड्राइवर धर्मराजा ही मिलेगा, उसको सारी ड्राइविंग आती है, जहाँ मर्जी ले जाए वो गाड़ी खींच के ले जाता है गाड़ी।
धर्मराजा का मतलब वो जो मौत के देवता है, हाँ, उनकी बात कर।
मैंने कहा अब तो वो ही मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तेरे को सरकारी नौकरी वाला, ना तो फुल ड्राइविंग वाला, फुल ड्राइवर है ओनली फॉर धर्मराजा।
अच्छा, यमराज।
तो सारी लड़कियां हंसने लगी, हाँ 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 हाँ, बाहर निकल गई आवाज।
तो उसने उसको बुरा नहीं लगा?
उसको बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने कहा भूल जा ये सपने लेने, तो वो भूली तो हुई है कि अब तो गए सपने।
लेकिन पुराने दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि वो हर छोटी बात दिल पे नहीं लगाते, कई बार ऐसे ऐसे मजाक में बातें की जा सकती हैं, तो कि ऐसा नहीं है कि वो दिल पे लेके।
ऐसे ऐसे हैं हमारे फ्रेंड, सब ऐसे हैं। वो क्या नाम, जैसे ट्रेनिंग में मैंने मेरा सोने का टाइम, मेरे को ये है कि रात को मेरे पास पानी जरूर होना चाहिए पीने के लिए, तो बचपन से ही आदत है कि पानी जो है अपने पास जरूर होना चाहिए। जैसे ही मैं पानी लेने शाम को बाहर जाती अपनी बोतल भरने, तो वो शिमला ठियोग रोडू की लड़कियां वो मेरे पीछे पड़ जाती, प्रेमा मार ला चिस। मैंने कहा मैं नहीं लाती चिस।
वो क्या होता है?
उस तरफ जो है वो पानी को चीसो बोलते चीसो।
अच्छा।
बोले प्रेम मारो लाओ चीसो, मैं कहा मानी लाती चीसो, बोले मोर दी लगी राड़ा पोर है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मर पुरे बोला, मर परे बोला।
अच्छा।
बाढ़ में गई तू।
तो जब आप शिमला में थे आपने गेटी थिएटर वगैरह भी किया कुछ मैंने सुना था।
हाँ,
तो वो वाला एक्सपीरियंस बताओ आपको, मतलब कि स्टेज पे आप पहले से ही स्टेज शो, तो आपने स्कूल में भी बताया आप जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो शिमला वाला जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा था?
अरे शिमला वाली तो बात ही छोड़ दे, मैं पहले से स्टेज पे जो है मैं बिल्कुल नहीं घबराती, और अब भी मैं ऑफिस की तरफ से स्टेज सेक्रेटरी बिल्कुल धड़ाधड़ स्टेज पे बोलती हूँ, मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं होती, और पहले से ही मैं जो है ये स्टेज पे जाने के लिए बहुत उत्सुक रहती कि अब प्रोग्राम में मेरे को कब बनाओगे कब बनाओगे, तो जैसे बन जाते। तो मैंने गेटी थिएटर शिमला में भी प्रोग्राम दिया है, इंडिविजुअल गाना भी गाया, और वहाँ पे क्या नाम फोक डांस भी किया, सारी लड़कियाँ जितनी भी होती थी सब ने हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ गेटी थिएटर में किया है।
तो आपको गाना याद है वो कौन सा गाया होगा गेटी थिएटर में?
हाँ गेटी थिएटर में गाना वो तो याद है, लेकिन मैंने आपको एक बार पहले भी सुनाया।
अच्छा, इसमें एपिसोड में सुना रखा है।
हाँ।
उसके क्या बोल हैं?
उसके बोल हैं भूली जाया दिलड़ुआ हो।
ओके ओके, हाँ ये तो आपने पहले भी सुनाया। तो फिर शिमला में आप जैसे मॉल रोड और ये सब जो देखा आपने, तो वो सब देखकर कैसा लगा आपको शिमला?
अरे शिमला तो उस टाइम ना इतनी, चलो गर्मी नहीं होती थी हमारी तरफ हमीरपुर में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती थी। शिमला में तो क्या आनंद ही आनंद, बर्फ से के गोले बना बना के खेलने हमने, हमारा नया एक्सपीरियंस था शिमला में मौसम का। मैं बहुत इंजॉय किया हुआ शिमला में।
ओके। और कुछ कोई ऐसी शरारत याद है जो आपने शिमला में की हो, मतलब जो एकदम याद आ जाती हो कि कुछ ऐसा लोग करते ही हैं, कहीं किसी को डरा दिया या कुछ कर दिया, कोई ऐसी शरारत है जो एकदम हट के याद आ जाती है आपको अलग से?
हाँ वो शरारत है, जानबूझ के पानी बर्फ जम जाता था, पानी नहीं आता था, तो हमने बाल्टियाँ उठाने की, हम पानी लाने जा रहे हैं बोड़ी में, बोड़ी वहाँ लगे सेब के पेड़, और पानी के बजाय हमने बाल्टी में लोगों के सेब ही तोड़ के ले आने और खाने, कच्चे नमक के साथ हरे हरे बिल्कुल कच्चे, जिसमें जरा रस भी नहीं भरा हुआ, तो वो खाने हमने बाल्टियाँ भर के वो सेब की ले आनी तोड़ के।
ओके। तो हमीरपुर में आपने आम खाए और शिमला में सेब। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये पापा कहाँ से आए बीच में?
अरे उसके बाद पापा जब जॉब में लग गई हमीरपुर में, फिर मेरी ट्रांसफर हुई टोनी देव में, तो वहाँ पर ये डॉक्टर थे, तो जहाँ इन्होंने क्वार्टर रखा था वहीं गांव में मैंने क्वार्टर रख लिया।
तो ये जो आप ये नौकरी लगी, तो नौकरी का थोड़ा सा बताओ कि कैसे लगी, आपने ट्रेनिंग की उसके बाद आप वापस हमीरपुर गए?
तुरंत तुरंत हमीरपुर में आके उसी दिन दूसरे दिन अपॉइंटमेंट में नौकरी में लगी, और 1 जनवरी 1985 को मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर सवेरे मिला था, और उससे पहले जो मैं ट्रेनिंग करके आई तो भी तुरंत मेरे को ऑर्डर थे कि आपने ऑफिस में काम करना है, तो मैं ऑफिस में लग गई थी।
ओके। तो आप ऑफिस में लग गए और उसके बाद पापा मिले आपको।
हाँ।
ये कौन से हालातों में मिले?
ये ऐसा था कि ऐसे हालात में मिले जब इन्होंने अपने हॉस्पिटल जाना और मैंने भी अपने ऑफिस जाना, तो रास्ता एक था, टाइम एक था 10 से 5, तो ये उसी रास्ते में मेरे को मिल जाते थे, आगे पीछे आगे पीछे। मैंने कहा 4 कदम आगे चलो या 4 कदम पीछे, तो कहते कि कदम से कदम मिला के चलने तो धकेल दूंगा खाई में।
तो उस समय आपको डर नहीं लगा कि ऐसा एक बदतमीज आदमी पीछा कर रहा है और ऐसे बोल रहा है?
हाँ डर लगा, फिर मैंने अपने भाई को बताया, भाई ने मेरी ट्रांसफर करवा दी वहाँ से, फिर और ये बंदा फिर पीछे लगा रहा, फिर हमीरपुर आना शुरू कर दिया, तो नौकरी नहीं करता था ढंग से। एक लड़का वकालत करता था वकील का काम, तो वो वकालत के बजाय वो डाकिया बन गए, इनका लेटर लेके डेली आ जाता था कि डॉक्टर साहब ने लेटर दिया, डॉक्टर साहब ने लिया, आज भी वो लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं।
ये पापा ऐसे गुंडे किस्म के लगते तो नहीं है कि भाई किसी को लेटर पकड़ा दिया और उसको इतना धमका भी दिया कि ये पोस्ट भी करना है तेरे को?
हाँ, और... देना बाई हैंड बाई हैंड हाथ में देना। वो उस फैमिली से इनका बड़ा लगाव था, वो फैमिली जो है इनको बहुत चाहती थी, तो वो इनका कोई भी काम जो है टालते नहीं थे।
तो फिर लेटर में लिखा क्या होता था?
लेटर में क्या लिखा होता था, ये कि शादी करनी है, ये है वो है, घर वालों को पूछ लो, ऐसा है अब वहाँ दिल्ली जाना, मुजफ्फरनगर जाना, तो ऐसे ऐसे लिखा होता था हर लेटर पे। okay. और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, एक काला अक्षर लिख के नहीं दिया था।
तो जब आपने भाव ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया, ना लेटर्स का ना साथ चलने का, तो फिर ये बात आगे बढ़ी कैसे?
अरे आगे बढ़ी कैसे, जहाँ मैं क्वार्टर रखा था वहीं पड़ोस में एक इन्होंने अपनी बहन बना ली, वहाँ आना जाना शुरू कर दिया, वो मेरे को बुलाना शुरू कर दिया उसने, ऐसे ऐसे जो आगे बात बढ़ती गई।
थोड़ा और डिटेल में बताओ, आपकी पहली मुलाकात कैसी थी?
पहली मुलाकात तो ऐसी थी कि जहाँ टोणी देव में मेरी नौकरी लगी, वो मेरी मकान मालकिन जो है वो पैदल मेरे को अपने मायके ले गई, वो बहुत सब पहाड़ियाँ उतरी, पहाड़ियाँ चढ़ी, मंडी ले गई, तो पैदल बहुत ज़्यादा ले गई, तो मेरे को उस पैदल चलने थकान में बुखार आ गया, वो घर में आए तो बुखार आ गया, उसने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ये कहते कि तो बहुत तेज बुखार है, और वो बिना बुलाए डेली आना शुरू कर दिया, बुखार उतरा, ऐसे बात बड़ी ज़्यादा।
अच्छा, तो डॉक्टर फिर ये था साइड। ओके, तो इन्होंने आना शुरू कर दिया, फिर आपकी देखभाल की इन्होंने?
हाँ, वो दवाई दे जाते थे, और उसको बीबी को पूछते थे जिस घर में मैं रहती थी कि ये क्या नाम, देखो ये दवाई है, सवेरे देना शाम को देना, और बीबी को भी जाल में फंसा लिया कि इस लड़के, वो बीबी बोलती थी कि ठीक है मेरी जिम्मेवारी है इस लड़की की तेरे साथ शादी करना, तू चिंता नहीं कर।
अच्छा, मतलब इतना पापा ऐसे थे कि लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि सारे लोग इनका काम करने के लिए तैयार हो गए थे।
हाँ, तो ये इनका व्यवहार ही ऐसा था, मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो अब ये शक होता है कि हर किसी को पैसे खिलाते थे पहले से। मेरे को भी बस मैं जबरदस्ती मेरे साथ बस में बैठ गए, मेरे साथ सीट पे, और मेरा हाथ पकड़ के अंगूठी डाल दी, और बस का दरवाजा खिड़की जो शीशा था खुला था, मैंने अंगूठी खोल के बाहर फेंक दी, बोला वो सोने की थी, मैंने कहा वो चाहे हीरे की थी मेरे को नहीं मतलब, वो बाहर फेंक दी थी मैंने।
ओके, और आपका ये जब हुआ तो फिर अल्टीमेटली शादी का तारीख कैसे आई, दिन कैसे आया, शादी कहाँ हुई, घर वालों का क्या रिएक्शन था?
क्या रिएक्शन था, वो फिर ले गए मेरे को वहाँ मुजफ्फरनगर, वहाँ पे कोर्ट मैरिज करी है एक वकील के घर में, मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बाकी जैसे रीति रिवाज से शादी होती है वैसी नहीं हुई है।
तो फिर आप पहुंच कैसे गए मुजफ्फरनगर, मतलब आपने, अगर आप कन्विंस नहीं थे तो आपने तो उनको रेजिस्ट नहीं किया थोड़ा सा?
ये खुद लेके गए, और ये बीच बीच में धमकियां देते थे, मैंने कहा मेरा बाप नहीं है, भाई भी हो, मैंने कहा बदनामी होगी, उससे अच्छा कि चल ही पड़ते, कहते कि जहाँ भी शादी होगी पहली रात को आग लगा के जला दूंगा, चुपचाप चल पड़, तो मैंने कहा ये बड़ी बेइज्जती होगी, मेरा गरीब परिवार है, मेरा पेरेंट्स जो हैं, तो मैंने कहा इस बदनामी से तो अच्छा कि चलो, एक भाई जो मेरा प्रिंसिपल वो मानता था कि डॉक्टर तो आजकल मंत्रियों को नहीं मिलते, तो हमें बिना पूछे और बिना इसमें डॉक्टर ये हाँ कर रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकी फैमिली नहीं मानती।
तो कहीं ना कहीं मतलब एक भाई में कम से कम सहमति थी थोड़ी सी?
हाँ, उसमें तो प्रिंसिपल जो उसमें थोड़ी सहमति थी।
तो फिर उससे आपको क्या थोड़ी सी वो सांत्वना मिली और थोड़ी प्रेरणा मिली, कैसे भरोसा मिला?
हाँ, उसी से मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली, भरोसा मिला, मैंने कहा चलो लाइफ में जाना तो है ही, शादी तो करनी है, तो इसलिए क्या।
अच्छा, बस वो जेम्स पीछे से इशारा कर रहा है कि सामने देखो वो इतनी बड़ी किश्ती जा रही है, वो दिख रही है आपको?
हाँ,
वो पता नहीं 5-6 मंजिल किश्ती होगी शायद, उससे
भी ज़्यादा दिख रही है। हाँ,
तो ये आपको अभी आइल ऑफ वाइट में है, थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, बताओ इस वक्त का नज़ारा समझाओ जरा हमको।
आय हाय हाय, इस वक्त का नज़ारा, वो जो सामने किश्ती है उन पे सूरज की 9:30 बज रहे हैं, सूरज की किरणें पड़ी हुई धूप, आय हाय देखने का नज़ारा आ रहा है, समुंदर के किनारे बहुत मजा आ रहा है।
और ये सामने आपको ये लहरें जो आ रही हैं कैसी लग रही हैं, इनकी आवाज़ कैसी लग रही है?
बड़ी मज़ेदार लहरों की आवाज़, बड़ी मज़ेदार। मैं तो एक मैं भी इन्हीं लहरों के साथ उछलूँ, वहां जाके छलांगे मारूँ, ऐसा मन कर रहा।
तो हमें ना कल कम से कम कल ये प्लानिंग करनी चाहिए। अच्छा,
हाँ
तो आपको छलांगे मारने का मन कर रहा है, तो आप अभी तो छलांगे नहीं मार सकते, तो गाना ही गा दो।
हाँ गाना
मैं सुनने वालों को बता दूं, इन्होंने मेरे को साइलेंटली 5 बार बोला गाना
हाँ तो गाना गा देती हूँ, मेरे को इन लहरों को देख के बड़ा मजा आ रहा है।
गाओ गाओ।
हाँ, निक्के निक्के नाड़ू चिलारे डालू, निक्के निक्के नाड़ू चिलारे डाल, पाणा ते बगदे झरने ओ, पाणा ते बगदे झरने ओ, उच्चे उच्चे पहाड़े ठंडा ठंडा मौसम ही त कुदरत करनी ओ, उच्चे उच्चे पहाड़े ठंडा ठंडा मौसम ही त कुदरत करनी ओ। घूमी आए असा देश विदेश, घूमी आए असा देश विदेश, किति मन मिलिया आंचल हो, किति मन मिलिया आंचल हो, जिथु जाना जाओ खूब कमाओ, मिलना नी अपना हिमाचल हो, मिलना नी अपना हिमाचल हो। निक्के निक्के नाड़ू चिलार डालू, पाणा ते बगदे झरने ओ, पाणा ते बगदे झरने ओ, उच्चे उच्चे पहाड़े ठंडा ठंडा मौसम, यही त कुदरत करनी ओ, यही त कुदरत करनी ओ। कांगड़े री धाम कने हमीरपुर दा बेसन, कांगड़े री धाम कने हमीरपुर दा बेसन, छैल लगे जिया कस मेरे आला केसर, छैल लगे जिया कस मेरे आला केसर, चाय पत्तिया दे बाग तुस दिखने, चाय पत्तिया रे बाग तुस दिखने, पालमपुर दिखने पर्वत नजारे हो, दिखने पर्वत नजारे हो, जिथु जाना जाओ खूब कमाओ, मिलना नी अपना हिमाचल हो, जिथु जाना जाओ खूब कमाओ, मिलना नी अपना हिमाचल हो। निक्के निक्के नाड़ू चिलारे डालू, निक्के निक्के नाड़ू चिलारे डालू, पाणा ते बगदे झरने ओ, पाणा ते बगदे झरने ओ, उच्चे उच्चे पहाड़े ठंडा ठंडा मौसम, यही त कुदरत करनी ओ, यही त कुदरत करनी ओ। घूमी आया सा देश विदेश, घूमी आया सा देश विदेश, किति मन मिलिया आंचल हो, किति मन मिलिया आंचल हो, जिथु जाना जाओ खूब कमाओ, मिलना नी अपना हिमाचल हो, मिलना नी अपना हिमाचल हो। शिमले तबस दी पहाड़ां दी राणी, जाखू दा मंदर उच्चा कुफरी बगदा पानी, जाखू दा मंदर उच्चा कुफरी बगदा पानी। इन्ना सोहना गीत प्रेम मिश्रा ने लिखिया, इन्ना सोहना गीत प्रेम मिश्रा ने लिखिया, पहाड़ां दा नाम चमकाना ओ, पहाड़ां दा नाम चमकाना ओ, जिथु जाना जाओ खूब कमाओ, मिलना नी अपना हिमाचल हो, मिलना नी अपना हिमाचल हो, मिलना नी अपना हिमाचल हो। धन्यवाद।
चलो जी, आपने तो आइल ऑफ वाइट की वादियों में सदा सदा के लिए ये गाना घुमा दिया। अब यहाँ इसकी वाइब्रेशंस घूमती रहेंगी कि एक बार प्रेम कुमारी ने यहाँ आके हिमाचली गाना गाया था।
ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, तो हम अब ऐसा करेंगे कि आगे का जो बात हुई आपकी शादी और उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। आपको जाने से पहले, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले, एक बार बताओ कि आज का दिन आपका कैसा रहा और आपको लग कैसा रहा है, शरीर मन बुद्धि आत्मा में कैसा लग रहा है?
बहुत शांति संतुष्ट, बहुत लवली दिन लग रहा है आज का तो। आई लव वाइट, ओ माय आई लव वाइट, क्या मजे आ रहे मेरे इंग्लैंड में, आई आई भूल नहीं सकते मैं आज का दिन।
चलो ये आपके लिए यादगार रहेगा। अभी जेम्स भी हमारा इंतजार कर रहा है तो हम चलते हैं। नमस्कार।
ओके नमस्कार, थैंक यू।
ओके सो जेम्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर 34 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स सो फार एंड यू माइट हैव ओवरहर्ड एटलीस्ट हर सिंगिंग। हाउ डिड यू फील?
या इट्स रियली नाइस, शी वाज वेरी जॉयफुल एंड वाज वेरी हैप्पी सिंगिंग।
ऑलराइट, एंड what do you think about her coming here? She's seeing C for the first time. What did you think of her reaction?
Yeah, very happy. I think she's one with nature, and this is a really nice place to come with the sea and the sky.
So I've added this a bit with you because, thanks for waiting. You poor thing, you have been sitting in such cold stone.
No, it's a pleasure. No one can complain sitting in an amazing place like this.
It must have been de-stressing for you as well.
Yeah.
All right. Thank you then.
It's okay.
All right then. अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। ये थोड़ा सा एडिशन था, जेम्स की आवाज़ भी आपको सुना दी। चलिए धन्यवाद।